ओम शांति। बहुत समय पहले कोई एक बहुत भोला और गरीब आदमी था और चलते चलते उसको एक दिन एक बहुत बड़ा हीरा मिल गया। उस आदमी के पास केवल एक ही संपत्ति थी और वो थी उसका एक बहुत ही प्यारा गधा जो उसको बहुत प्रिय था। वो व्यक्ति इतना भोला था कि वो ये जान नहीं पाया कि जिसको उसने पाया है वो हीरा है। वो समझा कोई एक साधारण सा पत्थर है और क्योंकि उसे गधे से बहुत प्रेम था सोचा कि क्यों ना इस हीरे को अपने गधे का आभूषण बना दो। तो उस पत्थर को उसने अपने गधे के गले में बांध दिया और वो आगे चलने लगा। गधा भी बहुत खुश था नए आभूषण को पाकर। वहां से एक जौहरी गुजर रहा था और उसने देखा कि इतना बहुमूल्य हीरा और इतना बड़ा हीरा आज तक मैंने कब नहीं देखा। और ये क्या हीरा कहां पड़ा हुआ है, एक गधे के गले में? सोचा जरूर ये व्यक्ति बहुत मूर्ख होगा और उसे इसकी कीमत पता नहीं होगी। परंतु वो जोहरी भी कंजूस, वो उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है ये क्या पत्थर लगा रखा है। वो कहता है, वो व्यक्ति कहता है, भोला व्यक्ति, कुछ नहीं, मुझे ऐसे ही पत्थर मिल गया था तो लगा दिया। वो जोहरी कहता है इसका क्या मोल दोगे, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। वो भोला व्यक्ति सोचता है इसका भी कोई दाम है, ये अगर मुझे वैसे भी मांगता तो मैं दे देता था, फिर भी मांग रहा है तो कुछ तो बताना पड़ेगा। वो कहता है एक रुपया। जोहरी सोचता है ये व्यक्ति तो वास्तव में बहुत ही मूर्ख है। और जोहरी कहता है एक रुपया, चार आना दे सकता हूं, बस देना है तो दो नहीं तो जाओ। तो वो भोला व्यक्ति सोचता है मैं भी क्यों मान जाऊं इतने जल्दी, आठ आने देने होंगे तो दो नहीं तो नहीं दूंगा, आठ आने से तो कम नहीं लूंगा। जोहरी मन ही मन सोचता है कि आगे निकल जाता हूं, थोड़ी देर में ये बुला लेगा। तो जोहरी आगे निकल जाता है इस आशा के साथ कि पीछे से कोई एक पुकार आएगी कि ले लो। उतने ही समय में एक दूसरा जोहरी वहां आता है, वो भी जान लेता है कि ये हीरा तो बहुमूल्य है। वो पूछता है कितने में दोगे। वो व्यक्ति कहता है एक रुपये में। वो जोहरी कहता है आठ आने में दे दो। तो वो भोला व्यक्ति भी मान जाता है और दे देता है। पहला जोहरी जब देखता है अब तक आवाज आई नहीं है, पीछे मुड़ के आता है और कहता है क्या हुआ हीरे का और पत्थर का। तो वो कहता है कि पत्थर तो मैंने किसी और को बेच दिया चार आने में। तो वो जोहरी कहता है अरे मूर्ख, वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था, तुम इतना भी नहीं समझते। तो वो व्यक्ति कहता है मैं तो गधा चराने वाला हूं, ये तो गधा भी नहीं समझता और मैं भी नहीं समझता, पर तुम तो समझते थे, तुमको तो पता था। तुमको तो ये पता था कि ये बहुमूल्य हीरा है लाखों करोड़ों की इसकी कीमत है, फिर तुमने इसे क्यों गवा दिया? दोष मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, मेरे लिए तो छोटा सा पत्थर ही था, वो आया और चला गया, पर तुम तो पारखी थे, तुमने तो उसे वैसे ही गवा दिया। मैं तो गधा हूं, परंतु तुम महागधा हो। आज की साकार मुरली भगवान के महावाक्य है, तुम्हारा एक एक सेकंड कैसा है, कैसा है? हीरे जैसा है। क्या कहा बाबा ने? तुम्हारा एक एक सेकंड बहुमूल्य है, हीरे जैसा है। सतयुग के समय से भी, संगम का जो समय है, वो उसकी महिमा बहुत है। जो समय याद में नहीं जा रहा है, जो समय तुम पढ़ाई में मस्त नहीं हो, वो टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट की कितनी सुंदर परिभाषा दी है आज की साकार मुरली में। जो समय याद में नहीं जा रहा है, जो समय पढ़ाई में तुम मस्त नहीं हो, वो टाइम वेस्ट जा रहा है। फायदे वाला टाइम कौन सा है आज की मुरली से? फायदे वाला टाइम कौन सा है, कौन बताएगा? पढ़ाई, फायदे वाला टाइम कौन सा है? और वो टाइम छोड़कर बाकी जो भी टाइम, जो भी कुछ करते हो, सब वेस्ट, कौन बताएगा? मन मना भव, ये जो टाइम है केवल यही फायदे वाला टाइम है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जो भी कुछ करते हो और जो भी तुम्हारा समय जाता है, सब कुछ वेस्ट है। तो समय को जानना है, समय को पहचानना है, कौन सा समय चल रहा है। एक एक पल, एक एक सेकंड, हमारी गति उस जोहरी जैसी ना हो जाए। पहचाना परंतु लिया नहीं, प्रयोग नहीं किया, गवा दिया अपनी ही मूर्खता के कारण। तो आज हम, आज की मुरली तो नहीं, कल की जो अव्यक्त वाणी है उस पर चर्चा करेंगे। तो कौन किसको देख रहा था कल? बाप दादा अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहा था। महादानी की परिभाषा बाबा ने दी, कौन सी? महादानी अर्थात जो बिना कोई स्वार्थ के प्राप्त हुए खजाने को देता है, दान करता है, वह महादानी है, बिना किसी स्वार्थ के। वरदानी की परिभाषा क्या कही? चार बातें हैं, वरदानी अर्थात जिसके पास ज्ञान गुण और शक्तियों के खजाने हैं, इन खजानों से जो संपन्न है वो है वरदानी आत्मा। एक, दूसरा जो रहम दिल है और फ्राक दिल है। तीसरा शुभ भावना है, श्रेष्ठ और शुभ भावना है, और कामना कौन सी है? हरेक का कल्याण हो जाए, यह कामना। कितनी ऊंची परिभाषा है। पहले तो ज्ञान से, गुणों से और शक्तियों से भरपूर है, बाद में रहम दिल है। हर आत्मा के प्रति कितनी श्रेष्ठ और शुभ भावना है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सबका कल्याण हो, सबका मिलन ईश्वर से हो जाए, सब अपनी खोई हुई संपदा को पाले। परंतु इन दोनों का आधार क्या है? महा दानी और वरदानी बनने का आधार महा त्यागी। बाबा ने कहा यह वीकली कोर्स चल रहा है, साप्ताहिक कोर्स त्याग का। सबसे पहली मुरली चली थी 2 हफ्ता पहले त्याग और भाग्य के ऊपर। तुम्हारा क्या क्या भाग्य है, शूद्र कुमार से ब्रह्मा कुमार बन गए, ब्रह्मा कुमार से ब्राह्मण जीवन फल रूप में तुम्हें मिला है, वो पहली मुरली थी। दूसरी मुरली देह भान के स्मृति की त्याग, स्मृति का त्याग। तीसरी मुरली थी पिछले संडे की, कौन सी पिछले संडे की, अधिकारी और दास, सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक, देह के दास से देह के मालिक बन गए हो, पिंजरे में नहीं हो, रूहानी बेहोशी नहीं है, वो मकड़ी का जाल नहीं है। तो वो था कर्मेंद्रियों के मालिक अर्थात अधिकारी, अर्थात कर्मेंद्रियों के आकर्षण का त्याग। एक भी कर्मेंद्रियों की अगर आकर्षण है तो उसे संपूर्ण त्याग नहीं कहा जाएगा। और आज की चौथी मुरली, टोटल 7 होगी। आज कौन सी है, लौकिक और अलौकिक संबंधों का त्याग। चौथी, पांचवी होगी व्यर्थ का त्याग, छठवीं होगी महात्याग की व्याख्या। तो सबसे पहले हम आज की मुरली में जो मुख्य 2 बातें हैं, एक है लौकिक संबंध, दूसरा है अलौकिक संबंध। लौकिक संबंधों के से तो छूट गए, परंतु अलौकिक संबंधों में फिर वही बातें निर्माण कर दी। उसमें बाबा ने मुख्य रूप से 2 बातें कही है, तो आज हम उन्हीं 2 बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, संबंधों में क्या घृणा, और दूसरी बात संबंधों में लगाव, आसक्ति, मोह, अटैचमेंट। तो सबसे पहली बात है घृणा। घृणा अर्थात, घृणा किसे कहेंगे, डिसलाइक, नफरत, अच्छा न लगना। सबसे पहली बात बाबा ने कही घृणा के लिए, यदि किसी व्यक्ति से घृणा है तो क्या हो जाता है, उसमें अवगुण दिखाई देते हैं, उसके अवगुणों से बुद्धि विचलित होती है, उसके ऐसे कर्म जो दिल पसंद नहीं है वह देखकर बुद्धि विचलित होती है, व्यर्थ बुद्धि को विचलित करता है, व्यर्थ चिंतन चलता है, परदर्शन चक्रधारी हो जाते हैं, संकल्प में, स्वप्न में, बोल में, उसी का चिंतन जिसके प्रति घृणा है। स्वार्थ पूरा नहीं होता, उसे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, चाहिए कि चाह, स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, इसके लिए घृणा जन्म लेती है। फिर कहते हैं मैं तंग हो गया, मैं तंग हो गई। इतनी बातें घृणा के बारे में बाबा ने कही है। परंतु अभी प्रश्न है कि हमें घृणा क्यों उत्पन्न होती है, यह चिंतन का विषय है। क्या मेरे अंदर किसी व्यक्ति के लिए घृणा है, यदि है तो उसका कारण क्या है, और यदि है तो वो किन किन बातों के लिए उस व्यक्ति से घृणा है। अपनी स्वयं की चेकिंग करनी है, वो भी सूक्ष्म रूप से। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि हमें किन किन बातों के लिए घृणा है दूसरों के प्रति, इसकी एक लिस्ट बनाई जाए। तो सभी बताएंगे किन किन बातों के लिए घृणा है हमें, सूक्ष्म में, अंदर ही अंदर मन में समाई हुई है। हम चाहते हैं कि शुभ भावना रखे, परंतु घृणा है। हम सोचते हैं कि घृणा से हम मुक्त हो गए, परंतु शायद कहीं ना कहीं है। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, मैं किसी से घृणा नहीं करता, सब पतित है, ये ड्रामा है। आज की साकार मुरली, क्या हमारे अंदर घृणा है, क्या हमारे अंदर डिसलाइक है? है तो किन बातों के लिए, कौन सी बातें हैं? कोई वो ईर्ष्या है, ईर्ष्या के साथ चलो घृणा भी हो गई, और ईर्ष्या द्वेष, और एक है घृणा। घृणा अर्थात नफरत, घृणा अर्थात डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, घृणा अर्थात हेट्रेट। एक है एंगर, सेटल्ड एंगर घृणा है, जो समा गया है, जो लंबा समय तक क्रोध रहा और उसने अपनी जगह बना ली। तो ऐसी हम 21 बातें निकालेंगे। सबसे पहले तो जैसे भजी ने कहा, किसी के संस्कार, किसी की आदतें, उनसे हमें घृणा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हमारे स्वार्थ की वहां पूर्ति नहीं हो रही है, ये बाबा ने कारण बताया है, इसलिए घृणा। किसी का ऐसा एक संस्कार है, ऐसा एक नेचर है कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है वो। हम जानते हैं ये ब्राह्मण कुल की आत्मा है, हम जानते हैं देव कुल की महान आत्मा है, हम जानते हैं हमसे पहले से यहाँ पर है, हम जानते हैं हमसे पहले भगवान को इसने जाना है, उसके बाद भी उसके उस एक संस्कार के कारण हमारे मन में, सूक्ष्म में, उस आत्मा के प्रति घृणा है। साइकोलॉजी में एक सुंदर सिद्धांत है जो साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी की है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति से हम बहुत प्रेम करते थे, उसी से बाद में एक दिन घृणा भी करने लगते हैं। लव हेट रिलेशनशिप, ये घृणा, ये प्रेम घृणा में क्यों परिवर्तन हो जाती है, ये भी एक सोचने का विषय है कि जिससे इतना अधिक प्रेम था कभी, उसी से घृणा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं था, वो प्रेम वास्तव में वैचारिक प्रेम था, केवल बौद्धिक प्रेम था। केवल क्या ऐसा करे कि जिससे प्रेम है वो प्रेम ही रहे और घृणा में ना हो जाए परिवर्तन। हम आत्माओं की बातें कर रहे हैं। कहीं हमने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी थी कभी कि जब तक प्रेम योग की अग्नि से नहीं गुजरता, तब तक वो स्थिर शाश्वत नहीं हो सकता। हर प्रेम को योग की अग्नि से गुजरना होगा तो ही वो शाश्वत होगा, नहीं तो कभी ना कभी वो घृणा में रूपांतरित हो सकता है। तो घृणा का एक कारण क्या है? संस्कार। दूसरों के संस्कार हमसे सहन नहीं होते, उनके प्रति घृणा है। एक दूसरा सभी घृणा से मुक्त है, इसका मतलब नेचर, संस्कार, आदतें। अब दूसरा बताओ, किसी का एटीट्यूड, वेरी गुड एटीट्यूड, किसी का एटीट्यूड हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी का दृष्टिकोण हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, दूसरी प्रकार की, इसके लिए उस आत्मा के प्रति हमें भी पता नहीं शायद, परंतु है घृणा। उसका मापदंड, उसकी जब स्तुति हो जाए तो यहां थोड़ा सा दुख होता है, सारे आकर उसकी महिमा कर रहे, यहां पता नहीं कुछ तो हो रहा है, हलचल, कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहां नहीं रहो, चले जाओ। हम भी कह रहे हैं हां बहुत अच्छा है, परंतु अंदर से कुछ तो हो रहा है, खुजली हो रही है अंदर, एटीट्यूड। अगला बिहेवियर, किसी की चलन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, शायद हमने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया है। भगवान ने आज कितना सुंदर महावाक्य कहा, मैं किसी से भी घृणा नहीं करता, फुल स्टॉप, जानता हूं सब पतित है, कॉमा, ये ड्रामा है, फुल स्टॉप। किसी की चलन, किसी का बिहेवियर, किसी का व्यवहार हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, और हम पूछ रहे हैं कौन सी बातों के लिए घृणा है? और हम यदि ब्राह्मण परिवार से भी बाहर जाए और संसार की दृष्टि से सोचे इस बात के बारे में, घृणा के बारे में, तो सबसे पहली घृणा तो एक होती है फिजिकल अपीयरेंस, किसी का चेहरा ही पसंद नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता है उसे देखना, असुंदर है बहुत, अप्रीतिकर है बहुत, वो आ जाए तो रुकने की इच्छा नहीं होती है वहां पर, चेहरा, किसी की ड्रेसिंग स्टाइल ही पसंद नहीं है, उसके लिए घृणा है, किसी का देखने का दृष्टि ही पसंद नहीं है, दृष्टि, हमें जिस दृष्टि से ये देखते हैं वो पसंद नहीं है, हमें घृणा है उस दृष्टि के विषय में। और स्टेटस, सोशल स्टेटस, यदि कोई बहुत गरीब है तो उससे ज्यादा दोस्ती करने की इच्छा नहीं होती है, अमीरों से दोस्ती करने की ज्यादा इच्छा होती है, ये मनुष्य का स्वभाव है। लो स्टेटस के जो लोग हैं, जिनके पास कुछ ज्यादा है नहीं, उनको हम थोड़ा नीचा समझते हैं, बोलेंगे नहीं पर समझते हैं, घृणा है, सूक्ष्म में घृणा है। अगर वो व्यक्ति हमें तू मैं में बात करे तो हमें अच्छा नहीं लगता। और कास्ट, रिलीजन, कोई निचली जाति का है तो, और हमें पता चल जाए और हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, तो भी सूक्ष्म घृणा, हमें पता नहीं परंतु है, जब तक काम नहीं करेंगे वो रहेगी और समाप्त नहीं होगी। अगली क्या और किसके, कौन सी बातें हैं दूसरों की, दूसरे की बोलने की कला, स्टाइल हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी के ज्ञान से ही घृणा, किसी के योग करने की विधि से ही घृणा, किसी के क्लास ही अच्छा नहीं लगता है, किसी किसी का क्लास इधर चालू हुआ हम उधर, हमें पसंद नहीं है, वही वही बातें। और ब्राह्मणों में सूक्ष्म घृणा जी, एटीट्यूड बोल दिया, यदि पता चल जाए उसके बारे में कि इनकी वृत्ति अच्छी नहीं है, तो किसी की वृत्ति, किसी की दृष्टि हो गया, वृत्ति हो गई, किसी का ऑरा, किसी का वायुमंडल, किसी के वाइब्रेशंस, और किसी के कर्म, किसी का खान पान, किसी का जी, बहुत सारी बातें हैं, इतनी सूक्ष्म है कि हमने आत्माओं के लिए कुछ कुछ इंप्रेशन बना रखे हैं, छोटे छोटे, दो लोग कमरे में हैं, एक आया दूसरा सोया था, किसी ने लाइट ऑन कर दिया, ये रोज का है, कोई हम सोए थे कोई आया पैर लगाकर चला गया, घृणा, सूक्ष्म, इसे हम घृणा शब्द तो बड़ा कठोर शब्द है, डिसलाइक थोड़ा छोटा शब्द है, नफरत थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम में शब्द है, परंतु छोटी छोटी बातें हमको नापसंद है। मुरली में बाबा ने कहा उसके प्रति व्यर्थ चिंतन चलता है, उसके प्रति उल्टा चिंतन चलता है, पर चिंतन चक्रधारी बन जाते हैं जी, जो क्लास में लेट आता है उनके प्रति, जो क्लास में सोता है और जिनके मोबाइल बज जाता है क्लास में बीच में ही, उन्हें वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। 7:30 बजे यदि गीत बजता है तो वो गीत हमको डिस्टर्ब नहीं करता है, पर 7:30 के पहले वही गीत 7:25 पे किसी के मोबाइल पर बजता है तो वो बहुत आघात और बहुत क्रोध से भरता है, कब गीत पूरा हुआ हो और उसको समझाए, कोई चप्पल पहन के शांति स्तंभ के अंदर घुस जाए, तो ये हम अपना प्रथम और सबसे बड़ा कर्तव्य समझते हैं कि कब हम सर्वप्रथम उसके पास जाए और समझाए श्रीमत क्या है। दूसरों को श्रीमत सिखाने की अत्याधिक तीव्र उत्कंठा, हमने हमारे मन पे घृणा पाल रखी है कहीं ना कहीं, हम ये भूल रहे हैं आत्माओं के रिस्पॉन्स, उससे घृणा, कर्मों से घृणा। उनके विचारों से घृणा, किसी के एडमिनिस्ट्रेशन से घृणा, इनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी के बोल से सूक्ष्म घृणा कहीं ना कहीं मन में है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा की महावाक्य है, जब तक इस संसार की किसी एक आत्मा के प्रति भी घृणा है तुम संपूर्ण नहीं बन सकते, संपूर्ण शुद्धिकरण करना होगा मन में, मन का प्रेम से भरना होगा। कैसे, क्या ये संभव है कि हम सभी घृणा से मुक्त हो जाए और हमारे चित्त को उस दिव्य प्रेम से भर दे, प्रेम, वैश्विक प्रेम, विश्व की हर आत्मा के प्रति प्रेम, जो जैसा है उसे हम स्वीकार ले, क्योंकि इस पथ पर हरेक संघर्षरत है, अध्यात्म में हर एक संघर्षरत है, हर संघर्ष कर रहा है हर आत्मा, हर एक किसी ना किसी संस्कार से मुक्त होना चाहता है और प्रयत्न कर रहा है, हो सकता है उतनी शक्ति नहीं है, हो सकता है उसे उसका ज्ञान ही नहीं है, हो सकता है उसे उसके बात की पता है, उस बारे में पता ही नहीं है, ये भी हो सकता है, लिस्ट और बड़ी हो सकती है। दूसरा प्रश्न है, घृणा का कारण क्या है? हम अपने आप को उससे ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, होलियर देन थाउ एटीट्यूड, हम आपसे अधिक पवित्र है, यह अहंकार, आपका खान पान ठीक नहीं है हमारा अच्छा है, हमारी धारणाएं अच्छी है, किसी की धारणाओं से भी घृणा। और घृणा का एक कारण तो है अज्ञान, जैसे वो बताए थे ना एक कहानी में, विदेश के एक व्यक्ति ने लिखा कि मेरी अम्मा जो थी एक आंख से अंधी थी, जब भी स्कूल में आती थी तो सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते थे तुम्हारी माँ अंधी है, तो मैं आकर अपनी माँ को बहुत डांटता था कि तुम नहीं आया करो मेरे स्कूल में, मेरा अपमान होता है, बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। और बड़ा होता है, देखता है एक दिन माँ रो रही है, फिर वो उसने लिखा है अपने जीवन कहानी में कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतना सहन करना पड़ता है। वो बड़ा होता है, बहुत बड़ी साउथ कोरिया के किसी यूनिवर्सिटी, सोल यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री पाता है, शादी करता है, अलग रहने लगता है, कभी नहीं आता है, कभी पूछता भी नहीं अपनी माँ के बारे में। और एक दिन दिखाया है उसकी माँ, उसकी शादी हो जाती है, बच्ची हो जाती है, उसकी माँ उससे मिलने आती है, जैसे बच्ची दरवाजा खोलती है देखती है एक वृद्ध महिला जिसकी एक आंख नहीं है, बच्ची डर जाती है, उसके पिता आते हैं और फिर से माँ को डांटते, तुम यहाँ क्यों आ गई, किसने बोला तुमको यहाँ आने के लिए, और उसको निकाल देता है। और बहुत समय के बाद एक निमंत्रण आता है, स्कूल का रीयूनियन है, तो उसे याद आती है अपने स्कूल की, स्कूल में जाता है तो वहां पता चलता है अभी अभी माँ की मृत्यु हुई है, फिर भी उसे कोई दुख नहीं होता है, सोचता है अंदर ही अंदर अच्छा ही हुआ, इतनी घृणा उसने भर रखी थी अपनी माँ के लिए। जाता है अपने घर पर, एक चिट्ठी रखी रहती है और वो पढ़कर वो लिखता है, माय हार्ट वॉज शैटर्ड। उसमें लिखा रहता है कि बेटा मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत घृणा है, पर मैं क्या करूं, जब बचपन में तुम छोटे थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारी आंख चली गई थी तो मैंने ही तुम्हें अपनी आंख दी थी, क्यों इतनी घृणा थी, शायद इस अज्ञान के कारण। घृणा का एक कारण है अज्ञान। हम किसी व्यक्ति के बारे में घृणा करते हैं परंतु हमने उसके बारे में कितना ज्ञान है, शायद हमने उसके व्यक्तित्व का वह एक ही पहलू देखा है, वह एक ही निगेटिव साइड देखी है, फ्लिप साइड ऑफ द पर्सनैलिटी, कितनी सारी रंगीन, कितनी सारी सकारात्मक चीजें उसमें होगी पर हमने वो कभी देखी ही नहीं। दूसरा एक कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग घृणा का, जैसे वो दिखाया है ना, एक लेडी बैठी हुई है एयरपोर्ट पर, उसकी फ्लाइट अभी आई हुई नहीं है, तो वो एक किताब खरीदती है और किताब पढ़ने में इतनी बिजी हो जाती है, साथ में एक कोकी, कोकी अर्थात स्वीट बिस्किट्स होते हैं छोटे छोटे, वो भी खरीदती है, बाजू में रखती है और किताब पढ़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति बाजू में आके बैठता है, वो उस पैकेट में से एक बिस्किट उठाता है। इसको लगता है कौन ये व्यक्ति है, बिना पूछे उठा रहा है, अनकल्चर्ड, फिर भी वो पढ़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद देखती है वो एक उठा रही है तो वो व्यक्ति भी एक उठा रहा है, एक बिस्किट ये उठा रही है, वो व्यक्ति एक बिस्किट उठा रहा है। सोचती है कि कम से कम पूछना तो चाहिए, कितने असभ्य लोग हैं इस संसार में, अनसिविलाइज्ड, मैनर्स भी नहीं है, कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि पूछे कि मैं खाऊं क्या। बस चबाते जा रहा है, वो भी आवाज कर रहा है, ये और जोर जोर से आवाज कर रही है खाते खाते, उसको बता रही है कि मुझे बिल्कुल तुम पसंद नहीं हो, जाओ। परंतु ये अंदर से ये भी सोचती है कि मैं कितनी अच्छी हूं कि मैं इसको कुछ बोलूंगी नहीं। पर और फिर एक ही बिस्किट बच जाता है, एक ही कोकी, तो वो व्यक्ति उठा लेता है। अब उसको लगता है ये अब क्या करेगा, तो वो दो टुकड़े करता है, एक टुकड़ा उसको देता है और मुस्कुराते हुए एक टुकड़ा खुद लेता है और चला जाता है। वो इतना गुस्से में आ जाती है, तब तक उसकी फ्लाइट आ जाती है, गुस्से में भागती भाग जाती है और फ्लाइट पर बैठती है, फिर से किताब खोलती है और जैसे ही पर्स खोलती है देखती है उसका कोकी का पैकेट तो उसके ही बैग में है, जिस पैकेट से वो खा रही थी वो उसका ही था। फिर भी घृणा से मन भर गया। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, घृणा से स्वयं को मुक्त करने के लिए जो कहा, प्रेम को योग की अग्नि से गुजरना होगा, नहीं तो वो प्रेम साधारण क्षणिक प्रेम होगा, थोड़े समय के लिए प्रेम होगा, स्वार्थ पर आधारित प्रेम होगा, वैसा प्रेम हमें नहीं चाहिए। घृणा से मुक्ति का मार्ग है प्रेम, स्वीकार, स्वीकार्य, एक्सेप्टेंस। इस ड्रामा के हर एक्टर को हमें स्वीकार करना है जो जैसा है। क्यों क्यों स्वीकार करना है? क्योंकि बाप ने स्वीकार किया है। यह ड्रामा बाप को पसंद है तो तुमको भी पसंद आना चाहिए। इस बाप को इस ड्रामा के हर एक्टर की हर एक्शन पसंद है तो तुम्हें भी आनी चाहिए। ड्रामा परफेक्ट है, एक्यूरेट है, यहां किसी का कोई दोष नहीं। हर एक्टर कैसा है? निर्दोष, संपूर्ण निर्दोष। दूसरा विषय है लगाव, झुकाव, आसक्ति, मोह, अटैचमेंट। मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहा है संतों ने इस संसार की सभी व्याधियों का कारण क्या है? मोह। मोह के लिए क्या कहा बाबा ने कि जहां मोह होता है, जहां आसक्ति होती है तो क्या होता है? जैसे घृणा वाला याद करता है बाप को, याद आती है वो आत्मा, उसी तरह मोह वाला भी बाप से संबंध नहीं जोड़ सकता, बाप को याद नहीं कर सकता। और फिर कारण देता है, कौन से कारण देता है? कोई तो चाहिए साकार में, आकार में शिव बाबा है, निराकार है, आकार है, परंतु साकार में कोई चाहिए। परंतु ये भूल जाते हैं कि बाप ही क्या है? सर्व सहारे दाता है। ये भूल जाते हैं कि सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त बाप है। जैसे भक्ति में वह मीरा, केवल साक्षात्कार ही नहीं, साक्षात अनुभव हुए उसके, तो क्या तुम ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चे सहारे दाता बाप से, सर्व प्राप्तियों के आधार मूर्त बाप से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं कर सकते हो? जब मुश्किलात आती है, जब मन में उलझन आती है तो क्या करते? अल्पकाल के सहारे पकड़ते हैं, प्राप्ति पकड़ते हैं, आधार समझते हैं आत्माओं को, जो कि धोखा देने वाले हैं। एक तरफ हजार भुजाओ वाला खड़ा है, दूसरी तरफ दो भुजाओ वाले, फिर भी दो भुजाओ वाले के पास जाते हो क्यों? अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ऐसा ही पूछा है एक अव्यक्त मुरली में। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ वो है, मेरे पास न आकर उनके पास जाते हो, बताओ क्यों? क्या उत्तर है? अटल निश्चय और विश्वास, दो शब्दों का प्रयोग है मुरली में। सहारे दाता बाप पर अटल निश्चय और विश्वास। विश्वास शब्द बाबा कम प्रयोग करते पर इस मुरली में आया है। एक विश्वास शब्द है, एक निश्चय है, एक श्रद्धा है। बाबा हमेशा निश्चय कहते हैं। तो क्योंकि सहारे दाता बाप से प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं है, ये कारण है। केवल थ्योरेटिक पता है कि सर्व संबंधी एक बाप है, वह प्रैक्टिकल अनुभव हो कि मेरा एक ही है, एक से सर्व प्राप्ति, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, एक में लगन, एक की याद, बस एक वही। क्या ऐसा भाव है? संसार के लौकिक के मोह तो नष्ट हो गए, यहां आने के बाद यहां नए मोह उत्पन्न करते हैं, लगाव झुकाव मोह आसक्ति अटैचमेंट व्यक्तियों से, व्यक्तियों को सहारा समझते हैं। और मोह के स्वरूप, जैसे कि मोह के क्या स्वरूप है ब्राह्मण परिवार में? मोह के स्वरूप साथ में खाना खाना और साथ में घूमना, वो चाहिए। योग करने में भी साथ में बैठे तो अच्छा योग लगता है, देख लो बैठा कि नहीं, नहीं बैठा होगा तो फोन करके भी बुला लेंगे या मैसेज करके। और मोह के सीट रोक के रखना वो तो अच्छी बात भी है। और क्या नहीं, वो तो चलो सहयोग है। और आप चलेंगे तो हम चलेंगे, आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, आप मधुबन जा रहे हो तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे, कैसी शर्त है? और छोटी छोटी चीजों के लिए डिपेंडेंट। पिछले संडे की क्लास में यहां पर हमने अधीनता की चर्चा की थी, शारीरिक अधीनता, मानसिक बौद्धिक अधीनता, भावनात्मक अधीनता, इमोशनल डिपेंडेंस, कर्म के लिए अधीनता, साधनों पर अधीनता और आध्यात्मिक अधीनता। आध्यात्मिक अधीनता अपने पुरुषार्थ के लिए किसी पर निर्भर, कोई हमें होमवर्क दे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। पुरुषार्थ की हर बात के लिए किसी पर निर्भर। और मोह के स्वरूप किसी को मिस करना, किसी की याद आना, किसी की याद सताना, देहधारियों की बात कर रहे हैं, किसी निमित्त के प्रति भी क्या एक्स्ट्रा मोह और कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। टीचर्स को कहा है बाबा ने, न्यारापन बाप से सीखो, किसी से अति लगाव भी नहीं, किसी से वैर भी नहीं, किसी से घृणा भी नहीं, तो किसी से लगाव झुकाव भी नहीं। ऐसी निर्लिप्त स्थिति कमल समान, टीचर्स को कहा है बाबा ने कल की मुरली में। और मोह के रूप, अपने अपने मोह के रूप बताओ तो बहुत हो जाएंगे। कोई अच्छा लगता है, किसी का साथ अच्छा लगता है, एक घृणा का स्वरूप वो भी है किसी की, किसी का प्रेजेंस, उससे घृणा, प्रेजेंस से वो है तो अच्छा नहीं लगता है, उस स्थान पर रुकने की इच्छा नहीं होती है, चले जाओ। अगर वो वहां बैठा है योग करने तो हम वहां नहीं बैठेंगे, हम कहीं दूसरी जगह ढूंढेंगे, उनके साथ नहीं करना है, वो भी सूक्ष्म घृणा है। तो एक मोह है किसी का प्रेजेंस चाहिए, जो घृणा वाली बातें है वही सारी इधर लगाव में भी है। दिखाया है महात्मा बुद्ध के काल में, एक व्यक्ति था युवा उसे इतना वैराग आ जाता है, इतना वैराग आ जाता है कि वो माँ बाप से तंग हो जाता है। वो माँ बाप का इतना मोह होता है बच्चे में, वो जवान हो गया फिर भी हर चीज के लिए उसे पूछते रहते, तंग आ जाता है माँ बाप से हर चीज, इतना मोह, इतना मोह। वो सोचता है अब मैं संन्यास ले लूंगा, वैराग, परम वैराग को प्राप्त होऊंगा, और घर छोड़कर चला जाता है। वहां पर ही बाजू में बौद्ध का एक संघ होता है जहां पे महात्मा बुद्ध आए हुए होते हैं, तो वो वहां जाता है और कहता है मुझे संन्यास लेना है, और वो संन्यास ले लेता है। बहुत दिनों के बाद जब वो घर नहीं आता, पिता सोचते बेटा गया कहां, और ढूंढने निकलते हैं उसको, बहुत ढूंढते बहुत ढूंढते, और फिर उसको याद आता है कि वो कह रहा था कि सन्यासी बनूंगा, तो देखता है कि अरे हाँ ये तो सन्यासी बन गया। तो वो भी जाता है महात्मा बुद्ध के पास पिताजी, और कहते मुझे भी सन्यास लेना है, और वो पिताजी भी सन्यासी बन जाते और वहां रहते हैं। बहुत दिनों के बाद माँ सोचती है बाप बेटे दोनों नहीं आए, कहाँ गए, तो सोचती है कि मैं भी जाती हूँ उन्हें ढूंढने। जाती जाती फिर उसे याद आता है कि सन्यास की बातें थी, फिर से वो आश्रम में पहुंचती है और वो कहती है मुझे भी सन्यास लेना है, तो वो भी सन्यास ले लेती है। तो माँ बाप और बेटा तीनों मिलते हैं, तीनों सुबह सुबह साथ साथ भिक्षा लेने जाते हैं, तीनों आकर साथ साथ बातें करते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं। अब ये नव संन्यास, नया संन्यास, जो सारी आसक्ति और सारा मोह और सारा ममत्व तो उधर था, अभी तीनों ने ही साथ में संन्यास ले लिया, साथ ही रहते हैं, साथ ही घूमते, साथ ही भिक्षा, साथ ही प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ साथ में। ब्राह्मण जीवन। महात्मा बुद्ध उनको एक दिन बुलाते हैं, कहते ये तुम्हारा कैसा संन्यास है। संन्यास अर्थात मोहनष्ट, निर्मोही, अमोही, मोहजीत बनना, सारे मोह के बंधन को समाप्त करना, मोह का जो विस्तार है विराट है। मोह का, संन्यास का लक्ष्य क्या था और तुम कर क्या रहे हो यहाँ? एक नया गृहस्थ बना दिया संन्यास आश्रम के अंदर, अलग से रहते, बाकी सारे भंती और जो सन्यासी है वो अलग रहते, इन तीनों का अलग। तो कहीं हमारा तो ऐसा सन्यास नहीं है, लौकिक तो सारा छोड़ दिया, अलौकिक में फिर से यहाँ सब कुछ चालू कर दिया, जो कुछ वहां था अभी यहाँ। तो मोह, स्वयं के मोह को चेक करना है, मिस करना किसी को, याद आना किसी की, बेचैनी होना, उसका मैसेज नहीं आया तो अच्छा नहीं लगता, ये सारे मोह है। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग अकेले का मार्ग है, जा में दो नरमाए। इस पथ पर हर एक को अकेला चलना है, संपूर्ण निराधार, एक वही आधार है बस। अगर किसी को भी आधार बनाया, कुमारों से बाबा ने बात की है, भोजन, समस्या और बीमारी, तीन चीजें, इसमें किसी साथी को तो आवश्यक नहीं समझते हो, किसी साथी की याद तो नहीं आती है। एक तरफ है विनाशी साथी, एक तरफ है अविनाशी साथी, रूहानी साथी। जितने आधार पकड़ेंगे उन्हीं के साथ सब कुछ शेयर करने की इच्छा होती है फिर। और एक अध्यात्म का नियम है कि जब आत्मा संसार की आत्माओं के साथ अपना सब कुछ शेयर करना चालू करती है तो परमात्मा के साथ शेयर होना करना स्वतः ही कम हो जाता है, उस संबंध से ही दूर चले जाते हैं। और एक चीज होती है जो मुरली में कही है, कर्म बंधन निर्माण होता है मोह से, आत्मा से लेन देन होती है तो कर्म बंधन निर्माण होता है। स्पीकर बन सकते हैं परंतु स्पीड नहीं आएगी पुरुषार्थ में, सेंसिबल बन सकते हैं परंतु इसेंसफुल नहीं बन सकते, सर्विसेबल बन सकते हैं परंतु विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। सोचेंगे समझेंगे कि हम बढ़ रहे हैं आगे, परंतु वो बढ़ना नहीं है, हिसाब किताब का बंधन बढ़ना है या जमा होना है, नए कर्म बंधन फ्रेश बॉन्डेजेस बना रहे। अब तक जो बॉन्डेजेस है, अब तक जो हिसाब किताब है, अब तक जो सारे अकाउंट्स है वो तो है ही, और अभी हम नए अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी जैसे कि एक भ्रम है। सोचना है हर एक को, हमने क्या पाया है मनुष्यों से, क्या वो सदा के सहारे हैं? क्या ऐसा कोई कह सकता है कि ये मेरा साथी है और ये कभी भी धोखा नहीं देगा? मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। रामायण में बहुत सुंदर कहानी है कि श्री राम बैठे हैं केवट की नाव में, केवट उनको ले चलता है गंगा पार, और वो केवट जानबूझ के कभी कभी नाव इधर करता है, कभी उधर करता है, कभी इधर करता है, कभी उधर करता है। तो श्री राम उस केवट से कहते हैं, केवट हमें डर लग रहा है, तुम नाव इस तरह क्यों चला रहे हो? तो वो कहता है कि हे प्रभु, यदि आपको डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लो। बहुत चतुर भक्त दिखाया है, उसको पता है यदि आत्मा परमात्मा का हाथ पकड़े तो कोई भरोसा नहीं आत्मा का, परंतु यदि परमात्मा स्वयं आत्मा का हाथ पकड़ ले तो तर जाए इस भवसागर से। और अभी तो भगवान स्वयं कह रहा है कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, और मेरा हाथ छुड़ाए किसी और का हाथ पकड़ते हो। उस एक को ही सहारा बना देना, सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त, सर्व सहारे दाता, वह एक ही है। तो दो चीजों पर काम करना है, एक तो घृणा, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, आत्माओं के प्रति डिसलाइक, हेट्रेट किसी भी कोने में यदि है बैठा हुआ तो उसको निकाल देना है। कैसे निकालेंगे? प्रेम से। कैसे निकालेंगे? कल की मुरली वरदान, मास्टर क्षमा के सागर हो तुम, चाहे आत्माओं ने जो भी किया हो वो तो हमारे ही कर्मों का हिसाब था, हमें लग रहा है अन्याय है, अत्याचार है, परंतु हमने जो किया वही था। इसके लिए क्या करना है? मास्टर क्षमा का सागर बन, माफ कर देना है। दूसरा लगाओ, यदि दो दिए जाए तो कौन सा लेंगे? अब ये बताओ कौन सा अच्छा है, घृणा या लगाओ? क्यों? दो ऑप्शंस दिए हैं, दो विकल्प है, दोनों में से एक चुनना है, कौन सा चुनेंगे? घृणा। वैसे तो दोनों ही छोड़ना है। एक विदेश की बहन ने कभी अनुभव सुनाया था कि दादी जानकी के पास एक बार कुछ बहनें आ गई, थोड़ा सा आपस में अनबन हो गई थी, तो उन्होंने अपनी क्लास में कहा था कि दादी ने कहा था ये अनबन हुआ ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इज बेटर देन अटैचमेंट। वो जो अटैचमेंट अगर हो जाए वो बहुत मुश्किल है छूटना, उसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि अटैचमेंट इतनी ज्यादा गहरी होती है कि अभी अटैच है, थोड़े देर के लिए दूर हो जाते फिर से अटैच होते, फिर से याद आती है, फिर से वही आत्मा, वही व्यक्ति, वही बहन, वही भाई खींचता है, इतनी गहरी है अटैचमेंट। तो दोनों से ही मुक्त होना है, स्वयं को प्रेम स्वरूप में स्थित करना है। यदि किसी के आने से अनकंफर्टेबल महसूस होता है, यदि किसी की स्तुति यदि हम सुनते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है, तो शायद उस आत्मा के लिए हमारे मन में घृणा है। यदि कोई व्यक्ति बहुत आगे जा रहा है और सब उसकी महिमा कर रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो भी सूक्ष्म घृणा है। एक पादरी एक बार चर्च में कहता है कि इस चर्च में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में थोड़ी भी घृणा नहीं है? यदि ऐसा एक भी व्यक्ति होगा पूरे चर्च में, तो स्वयं भगवान का अवतरण इस चर्च में आज हो जाएगा। देखता है कोई एक तो होगा कि जिसके मन में कोई भी घृणा नहीं है, कोई भी हाथ नहीं खड़ा करता है। फिर थोड़े से देर के बाद एक बूढ़ा सा व्यक्ति हाथ खड़ा करता है, तो वो पादरी इतना खुश हो जाता है, वाह ये एक व्यक्ति है कि जो घृणा से मुक्त है। उससे पूछता है कि कुछ बताओ, तो वो कहता है कि जिन जिन से मैं घृणा करता था वो तो सारे दुष्ट थे, जिन जिन से मैं घृणा करता था सारे मूर्ख थे, और जिन जिन से मैं घृणा करता था अब सब मर गए, अब किससे करूं, जितने थे मेरे दुश्मन सब मर चुके हैं, इसलिए अब किससे करता नहीं। ऐसी ये वाली नहीं अवस्था, जब सब है, जीवंत है, ब्राह्मण परिवार में है, संसार में है, जहां पर भी है, सभी के प्रति समभाव, समदृष्टि, एक बाप की संतान। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था, मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं विश्व का बाप हूं। ये मत समझ लेना कि मैं केवल तुम्हारा बाप हूं, हर आत्मा मेरा बच्चा है। उस नाते भी हर आत्मा के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव। लास्ट संडे की मुरली, जो बाप की मर्जी वो बच्चे की, बच्चों की मर्जी। बाप की मर्जी क्या है? शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, स्वकल्याणी और विश्व कल्याणी, ये बाप की मर्जी है। तो इन दोनों ही बातों से मुक्त होना है। टीचर से बाबा ने मुलाकात की, उसमें बाप के गुण, बच्चों के गुण, बाप के बोल, बच्चों के बोल। टीचर्स के लिए कहा है, जो बाप के संकल्प वो टीचर्स के संकल्प, जो बाप के कर्म वो टीचर्स के कर्म, और न्यारापन। ये एक बात सीखनी है, कर्म करना परंतु डिटैच हो जाना, सारी सेवाएं करना परंतु होते ही डिटैच्ड। हम जब बहुत छोटे थे एक बार, तो एक जगह एक प्रवचन चल रहा था जिसमें हमने पहली बार गीता का एक श्लोक, जीवन का ही पहला श्लोक जो सुना था, जो हमको बहुत याद रहता है, पांचवा अध्याय दसवां श्लोक, ब्रह्मण ध्याय कर्माणि संघम तत्व करोति यः लिप्यते न पापेन पत्रम पुष्पम विमाम भसा। गीता में लिखा है कि योगी जो होगा कर्म संन्यास योग में, योगी अर्थात वो कर्म ऐसा करेगा जैसे कि कमल का फूल, डिटैच्ड, अनअटैच्ड, उसके पत्तों में जल नहीं ठहरता, इतना डिटैचमेंट अपने कर्मों से, कर्मों से भी और कर्मों के परिणाम से भी, दोनों चीजों से। ये कर्मातीत की एक परिभाषा है। तो न्यारापन। कुमारों से भी बाबा ने बात की, भोजन की समस्या और बीमारी, जो कुमार होंगे वो बताओ क्या करेंगे तीन अवस्थाओं में, फिर क्लास को पूरा करते हैं। कोई साथी तो नहीं चाहिए, क्या करेंगे, भोजन, कोई जीवन में समस्या आ जाती है और बीमारी आ जाती है, तो कुमारों को कौन याद आता है, कोई तो चाहिए। बाबा ने कहा कि बाप ही सबसे बड़ा सहारा है। उन आत्माओं से क्या फायदा जिनका भरोसा नहीं, कहां तक चलेंगे वो हमारे साथ। जीवन की हर परिस्थिति में हर समय निराधार रहना। व्यक्तियों का आधार जो आदत सी बन गई, हैबिट हो गई है कि कोई चाहिए, इसको धीरे धीरे मिटाना है, और जो सर्व संबंध है उससे, उसका अनुभव करके देखना है। केवल सुबह सुबह योग में नहीं बोलना है खाली कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो और काम पूरा हुआ। दिन भर में एक्सपीरियंस करना है, उसको यूज करना है, यूज मी। तो यहां पर बाबा ने कल की मुरली पूरी की, और आज की मुरली में भी जो कहा, समय का महत्व, उसको जानना है। अच्छा, ऐसे सदा निस्वार्थी आत्माओं को, ऐसे सदा सर्व कल्याणकारी आत्माओं को, ऐसे सदा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने वाले वरदानी महादानी आत्माओं को, ऐसे दाता के बच्चे सदा देने वाली आत्माओं को, ऐसे सदा लेने की अल्पकाल की प्राप्ति से क्या मुक्त, कोई दूसरा शब्द है, लेने की अल्पकाल की प्राप्ति से भी मुक्त। बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।